रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। कुरान मजीद के सूरह यूनुस की 47वीं, 48वीं और 49वीं आयतों की तिलावत का श्रेय प्राप्त कर रहे हैं कारी कासिम रजी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
الله کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور کہتے ہیں یدی تم سچے ہو تو یہ دھمکی کب پوری ہوگی کہہ دو مجھے نہ تو اپنے برے کا ادھیکار ہے نہ بھلے کا بس جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے ہر جاتی کے لیے ایک نیت سمے ہے جب ان کا نیت سمے آ گیا تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے شوتاؤں میں ہوں احمد عباس میرا سلام سویکار کیجیے ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 kHz پر سن رہے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@www.irib.ir ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.com/hi اور شتو آج گروار ہے آبان مہینے کی 5 ربیع ثانی کی 1 اور اکتوبر کی 27 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात, और श्रोताओं सभा के अंत में एक और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, सफल महिलाएं। तो यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। शिराज में धार्मिक स्थल के भीतर होने वाले आतंकी हमले के बाद इस्लामी इनकलाब के नेता ने कहा कि दोषियों को यकीनन सजा दी जाएगी। राष्ट्रपति रईसी ने भी शिराज हमले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हमले के जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। लेबनान और इसराइल के बीच समुद्री सीमा तय करने के लिए समझौता होने जा रहा है। परमाणु युद्ध की अटकलों के बीच भारत के रक्षा मंत्री ने अपने रूसी समकक्ष से बात की है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान के मशहूर शिराज नगर में स्थित पैगंबर इस्लाम के वंशज और इमाम रजा अलैहिस्सलाम के भाई अहमद बिन मूसा के रोजे के भीतर होने वाले आतंकी हमले में दर्जनों जायरीन के शहीद और घायल हो जाने के बाद इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह उज़्मा खामेनी ने एक संदेश जारी किया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि हजरत अहमद बिन मूसा अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा रोजे पर मुजरिमाना कार्यवाही ने, जिसमें दसियों बेकसूर मर्द, औरतें और बच्चे शहीद व घायल हुए, दिलों को गमजदा व सोगवार कर दिया। इस पीड़ादायक जुर्म के दोषी यकीनी तौर पर सजा पाएंगे, लेकिन अजीजों की जुदाई का दाग और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हरम के अपमान का बदला इस तरह के जुर्म की जड़ों की तलाश करके इस सिलसिले में ठोस व समझदारी भरे कदम के बिना पूरा नहीं होगा। इस्लामी क्रांति के नेता ने अपने संदेश में आगे लिखा कि आग लगाने वाले दुश्मन और उसके गद्दार जाहिल या गाफिल मोहरों के मुकाबले में हम सब की कुछ जिम्मेदारियां हैं। सिक्योरिटी विभाग और न्यायपालिका से लेकर वैचारिक व प्रचारिक मैदान में काम करने वालों और अजीज अवाम के एक एक फर्द को उन लोगों के खिलाफ जो आम लोगों की जान, उनकी सुरक्षा और उनके पाकीज़ा स्थलों की परवाह नहीं करते और अनादर करते हैं, मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सर्वोच्च नेता ने लिखा कि इंशाल्लाह अजीज कौम और जिम्मेदार इदारे यकीनी तौर पर दुश्मन की शैतानी साजिश को नाकाम बनाएंगे। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी कहा कि शाह चिराग के मजार पर हमला करने वालों और उसके योजनाकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने शाह चिराग के मजार पर की गई आतंकी कार्यवाही में शहीद तथा घायल होने वालों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए अपने संदेश में लिखा कि देश के सुरक्षा बल इस कार्यवाही के जिम्मेदारों की पहचान करके उनको ऐसा सबक सिखाएंगे जो सबके लिए पाठ होगा। उन्होंने लिखा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान के शिराज नगर में शाह चिराग के मजार पर बुधवार की रात तकफीरी आतंकियों ने नमाजियों पर गोलीबारी की तकफीरी आतंकी ने नमाजियों पर गोलीबारी कर दी। इस आतंकी कार्यवाही में कम से कम 15 नमाजी शहीद हो गए और 20 से ज्यादा घायल हैं। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ के चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि सिक्योरिटी और जनता की जान माल की हिफाजत आर्म्ड फोर्सेस की रेड लाइन है। जनरल बाकरी ने शिराज में पैगम्बर इस्लाम के वंशज हजरत अहमद बिन मूसा शाह चिराग के मजार पर आतंकी हमले में बेगुनाहों की शहादत पर सांत्वना देते हुए कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी और योजनाकार ईरान की सुरक्षा व इंटेलिजेंस एजेंसियों के चंगुल से बच नहीं पाएंगे, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। बुधवार की शाम होने वाले आतंकी हमले में 15 जायरीन شہید اور 27 گھائل ہوئے۔ اس آتنکی حملے کی ذمہ داری آتنکی سنگٹھن داعش نے سویکار کی ہے۔ پاسداران انقلاب فورس کے چیف جنرل حسین سلامی نے بھی اس گھٹنا پر پرتکریا جتاتے ہوئے کہا کہ ایران کی جاگروک و سمجھدار جنتا کے آکروش و انتقام کی آگ آتنکیوں کو جلا دے گی۔ جہاں راجنیتک اور پرچارک گلیاروں میں یوکرین سنکٹ کی بنیاد پر پرماڑو یدھ کے خطرے کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں، وہی خبر ہے کہ روس کے رکشا منتری سرگئی شوئیگو اور بھارت کے رکشا منتری راجناتھ سنگھ کے بیچ بدھوار کو فون پر بات ہوئی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹیلیفونی بات چیت میں راجناتھ سنگھ نے اپنے روسی سمکش سرگئی شوئیگو سے کہا کہ یوکرین یدھ میں کسی بھی پکش دوارا پرماڑو ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پرماڑو یا ریڈیولوجیکل ہتھیاروں کے اپیوگ کی سمبھاونا مانوتا کے مول سدھانتوں کے خلاف ہے، بات چیت اور کوٹنیتی کے مادھیم سے یدھ کو ترنت روکا جائے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کی خبر کے انوسار روس کے رکشا منترالے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مدعے پر نیٹو کے رکشا منتریوں کے ساتھ بھی شوئیگو نے رویوار کو کئی بار بات چیت کی۔ روس کا آروپ ہے کہ یوکرین ایک ریڈیو دھرمی ڈرٹی بم کے اپیوگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، یوکرین اس کا کھنڈن کرتا ہے۔ بھارت کے اتر پردیش راجیہ کی رامپور عدالت نے سماجوادی پارٹی کے نیتا اعظم خان کو ہیٹ اسپیچ معاملے میں 3 سال کی سزا سنائی۔ عدالت نے جانے مانے نیتا پر 25,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا۔ خراب سواستھ کے باوجود جیل میں بے حد کٹھن سمے گزارنے کے بعد ضمانت پر رہا ہونے والے اعظم خان کو جہاں یہ سزا سنائی گئی ہے، وہیں یہ خبر بھی ہے کہ عدالت سے ہی انہیں اس معاملے میں انترم بیل مل جائے گی۔ دوشی ثابت ہونے کے بعد ہی انہیں عدالتی کسٹڈی میں لے لیا گیا تھا۔ ورش 2019 میں چناؤ کے دوران اعظم خان نے تحصیل ملک میں بھاشن دیا تھا جسے لے کر کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ خان پر ہیٹ اسپیچ دینے کا آروپ ہے۔ انہوں نے 7 اپریل 2019 کو رامپور کے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے سنیکت امیدوار کے روپ میں اپنی چناوی سبھا میں بھاشن دیتے ہوئے رامپور میں تعینات کئی پرشاسنک ادھیکاریوں اور پردھان منتری نریندر مودی پر کچھ آروپ لگائے تھے۔ ان کے اس بھاشن پر سنگیان لیتے ہوئے چناؤ آیوگ نے کاروائی کی تھی اور چناؤ آیوگ کی ویڈیو ٹیم کے انچارج دوارا ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی۔ روس نے امریکہ کو بہت بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر یوکرین یدھ میں امریکی سیٹلائٹ کا استعمال ہوا تو یہ سیٹلائٹ روس کے لیے وید ٹارگٹ بن جائیں گے۔ روس کے ودیش منترالے میں پرماڑو ہتھیار نیترن معاملوں کے ادھیکاری کانسٹینٹین وورونسوف نے یہ بڑا بیان دیا ہے۔ وورونسوف نے سنیکت راشٹر کی مہا سبھا کی بیٹھک میں کہا کہ ہم یوکرین کی گھٹناؤں کے بیچ بہت صاف طور پر نظر آنے والے ایک بےحد خطرناک موڑ پر دھیان کیندرت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ انترکش میں ناگرک ادیشوں کے لیے استھاپت کیے گئے انفراسٹرکچر کو امریکہ اور اس کے گھٹک یدھوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ وورونسوف کا یہ بیان رشا ٹوڈے میں پرکاشت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سویلین ادیشی کے لیے بنایا گیا انترکش انفراسٹرکچر یدھ کے لیے استعمال ہوا تو یہ سیٹلائٹ ہمارا وید لکش بن جائے گا۔ روسی ادھیکاری کے اس بیان کو بڑی گمبھیرتا سے لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ انترکش میں ٹکراؤ کی اور صاف اشارہ ہے جس کا نقصان بڑے پیمانے پر ہوگا۔ اس بیچ سی این این نے اسرائیلی راشٹرپتی اسحاق ہرتسوگ کا ایک بیان پرکاشت کیا ہے کہ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ یوکرین کو ہتھیار دے، مگر وہ ایئر ڈیفینس سسٹم نہیں دینا چاہتا کیونکہ ڈر ہے کہ وہ سسٹم دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے۔ کچھ دن پہلے روس کے ودیش اپ منتری ویدوروف نے کہا کہ ماسکو کے پاس آرمبھک سوچنا ہے کہ اسرائیل یوکرین کی مدد کر سکتا ہے اور اینٹی میسائل اور اینٹی ڈرون سسٹم سپلائی کر سکتا ہے، جو بہت سنویدنشیل معاملہ ہے۔ لبنان کے راشٹرپتی مشل اون کو لبنان اسرائیل سمندری سیما سمجھوتے کا مسودہ دے دیا گیا ہے اور امریکی مدھیست کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے کے بعد دونوں پکشوں میں کوئی بھی دوسرے کے حصے کا استعمال نہیں کرے گا۔ لبنان کے اپ سنسد سبھاپتی الیاس بوساب نے بتایا کہ مسودے پر راشٹرپتی مشل اون ہستاکشر کر دیں گے۔ اس بارے میں تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ اس معاملے میں مدھیستتا کرنے والے امریکی ڈپلومیٹ آموس ہوکسٹین نے بیروت میں پترکار سمیلن میں کہا کہ یہ ایتہاسک دن ہے کیونکہ اس دن وہ سمجھوتا ہو رہا ہے جس سے لبنان کے لیے بہت سے افسروں کے دروازے کھلیں گے۔ ہوکسٹین نے کہا کہ سمجھوتے کے بعد لبنان भूमध्य सागर में ब्लॉक 9 में काम शुरू कर सकता है और कोई भी लेबनान से इस ब्लॉक से होने वाली आमदनी नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि यह समझौता दो सरकारों का है जिनके बीच कूटनैतिक संबंध नहीं है और इससे इस बात की गारंटी होगी कि कोई भी पक्ष दूसरे के हिस्से पर कब्जा न करे। लेबनान ने मसौदे पर अपनी सहमति का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद इसराइल ने भी लेबनान के साथ समुद्री सीमा के समझौते पर अपनी सहमति का ऐलान किया था। गुरुवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम को रास नाकुरा शहर में इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, जबकि इस मौके पर अमरीका और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेंगे। याद रहे कि इस इलाके से इसराइल तेल और गैस की चोरी की कोशिश करता रहा है, मगर हिजबुल्ला ने इस इलाके के ऊपर ड्रोन विमान भेजे और कहा कि अगर समुद्री सीमा का निर्धारण किए बिना इसराइल ने तेल और गैस निकालने की कोशिश की तो हिजबुल्ला कार्यवाही करेगा, जिसके बाद इसराइल ये समझौता करने पर मजबूर हो गया। तेल को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गंभीर मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा अपने रिजर्व तेल को बाजार में लाने के फैसले से सऊदी अरब ने इसकी आलोचना की। तेल को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो ताजा मतभेद पैदा हो गए हैं उसके बारे में दोनों पक्षों की राय अलग अलग है। अमेरिका का मानना है कि सऊदी अरब हमसे दूर होकर रूस से निकट हो रहा है और सऊदी अरब का कहना है कि उसने ये फैसला राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि केवल और केवल आर्थिक कारणों से लिया है। सऊदी अरब के कतीफ में 9 शिया कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा सुनाई गई है। सऊदी सोशल मीडिया यूजर्स ने इस खबर को बड़े पैमाने पर फैलाया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लेखकों और कार्यकर्ताओं का दमन बड़े पैमाने पर जारी रखा हुआ है। कतीफ के सोशल मीडिया यूजर्स ने इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि जिन 9 कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें फाजिल हसन सफवानी, मोहम्मद हुसैन आले अम्मार, यूसुफ मोहम्मद अल मिसलाब, जवाद अब्दुल्ला आले केरीस, हसन अली अल मजरा, रायद अब्दुल वाहिद अल खैर, हैदर नासिर आले तहीफा, मोहम्मद सईद आले अब्दुल आल, सऊद मोहम्मद अल फर्ज हैं। अब तक दर्जनों सऊदी शिया आले सऊद की सुरक्षा एजेंसियों की बर्बरता का निशाना बने हैं, जबकि अनेक को संदिग्ध रूप से मुकदमा चलाकर सजाएं सुनाई गई हैं। मार्च 2022 में 41 शियों को अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के कारण फांसी दे दी गई थी। न्यूजीलैंड की पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जिस पर संदेह है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के कार्यालय पर होने वाले हमले में वो शामिल थी। पुलिस का कहना है कि 57 साल की महिला को ऑकलैंड में प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाली घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि हिरासत में ली गई महिला जांच में सहयोग कर रही है और फिलहाल किसी अन्य संदिग्ध की तलाश नहीं की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय की खिड़की टूट गई और मीडिया का कहना है कि इमारत पर धुएं का बम भी फेंका गया। पुलिस का कहना है कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री अर्डन इस समय यात्रा पर हैं। और आखिर में हम ये सूचना देना चाहते हैं कि दुनिया भर में मौजूद रेडियो हिंदी पास्टरे हिंदी के श्रोताओं और पाठकों को सूचित किया जाता है कि 30 अक्टूबर 2022 से हमारी फ्रीक्वेंसी बदल रही। इस्लामी गणराज्य ईरान की हिंदी भाषा की आवाज रेडियो हिंदी तेहरान के दुनिया भर में मौजूद श्रोताओं को सूचित किया जा रहा है कि हमारे प्रसारण को जो आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर अभी सुन रहे हैं वो आप 30 अक्टूबर 2022 से शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9,620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे। और श्रोताओ, इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। ईरान के शहर शीराज स्थित एक धार्मिक पवित्र स्थल पर आतंकवादी हमले का जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के फारस प्रांत के केंद्रीय स्थान शीराज में स्थित इमामजादे शाह चिराग के पवित्र रोजे में नमाजियों और श्रद्धालुओं पर होने वाले आतंकी हमले में कई श्रद्धालु शहीद और घायल हो गए। बुधवार की शाम नमाज के समय हथियार से लैस एक आतंकी रोजे के प्रांगण में दाखिल हुआ और उसने वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया जाता है कि इस आतंकी हमले में 15 श्रद्धालु शहीद और 19 अन्य घायल हो गए। मारे गए श्रद्धालुओं में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मारे गए लोगों में 1 साल का एक बच्चा भी शामिल है। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हमलावर इमाम खुमैनी नामक प्रांगण में दाखिल हुआ और उसने रोजे के अंदर आकर श्रद्धालुओं पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी गुट दाइश ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि किस तरह दाइश का आतंकी रोजे में दाखिल होता है और फिर श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इमाम जमात ने जैसे ही नियत बांधी वैसे ही वहां पर खड़े सेवक को गोली लगी और वो चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां पर खड़े दूसरे सेवक ने समझदारी का प्रदर्शन करते हुए मुख्य द्वार बंद कर दिया, जबकि बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने में व्यस्त थे और ईश्वर की कृपा से ये लोग सुरक्षित रहे। जब हमलावर ने देखा कि मुख्य दरवाजा बंद हो चुका है तो वो जरी की ओर दौड़ा और उसने रास्ते में खड़ी एक महिला को उसके 5 वर्षीय बच्चे के सामने गोली मार दी और फिर बच्चे को भी नहीं छोड़ा। वहां पर मौजूद लोगों ने जब गोलियों की आवाज सुनी तो वो जरी की ओर भागे ताकि वहां शरण ले सके, लेकिन हमलावर वहां पहुंच चुका था और उसने वहां मौजूद लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोग एक दूसरे पर गिरे और पूरी तरह से खून में लथपथ हो गए। तभी अचानक एक सेवक ने पीछे से आतंकी पर हमला किया और उसे दबोच लिया। इस आतंकी हमले के बाद फारस प्रांत में वरिष्ठ नेता के प्रतिनिधि और फारस प्रांत के गवर्नर ने 3 दिनों के सार्वजनिक शोक का ऐलान किया है। IRGC के वरिष्ठ कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने आतंकी घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और हमले के समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के धैर्यवान लोगों के प्रतिशोध की आग दंगाइयों, फसादियों और आतंकियों व उनके समर्थकों को भस्म करके रख देगी। उनका कहना था कि हालिया दंगों और फसादों ने दुश्मनों को अपना लक्ष्य साधने में निराश कर दिया और शैतानों से उनकी खुशियां छीन ली हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
सऊदी अरब और अमेरिका के बीच मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी।
तेल को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गंभीर मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा अपने रिजर्व तेल को बाजार में लाने के फैसले से सऊदी अरब ने इसकी कड़ी आलोचना की है। तेल को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो ताजा मतभेद पैदा हुए हैं उसके बारे में दोनों पक्षों की राय अलग अलग है। अमेरिका का मानना है कि सऊदी अरब हमसे दूर होकर रूस से निकट होता जा रहा है। ओपेक प्लस द्वारा 20 लाख बैरल तेल की कटौती के फैसले के 2 सप्ताहों के बाद अमेरिका ने निर्णय लिया है कि वो अपने रिजर्व तेल के कुछ भाग को बाजार में लाएगा। दोनों देशों के बीच तेल को लेकर पाया जाने वाला मतभेद संभवतः यूक्रेन संकट के कारण भी हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने इस बात का बहुत प्रयास किया कि सऊदी अरब अपने तेल के उत्पादन में वृद्धि कर दे। रियाज ने अमेरिका की बात को रद्द करते हुए तेल में वृद्धि करने के स्थान पर अपने उत्पादन में ही कमी कर दी। इस प्रकार से अमेरिका का मानना है कि सऊदी अरब अब हमसे दूर होकर रूस से निकट हो रहा है। ریاض نے اس دعوے کو رد کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ تیل کے اتپادن کو گھٹانے کا اس کا فیصلہ کیول آرتھک دشٹی سے ہے، کوٹنیتک دشٹی سے نہیں۔ اوپیک پلس کے فیصلے کو وفل بنانے کے لیے امریکہ نے اپنے ریزرو تیل بھنڈار سے تیل نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے اس فیصلے کو تیل کے بازار میں امریکی ہستکشیپ کی سنگیا دی ہے۔ پرسپر متبھیدوں کے بارے میں سعودی عرب کا یہ ماننا ہے کہ تیل کے معاملے میں امریکہ اس کی سوتنترتا کو اندیکھا کرتے ہوئے اس کا اپمان کر رہا ہے۔ اس بات کو سعودی عرب کی مہیلا راجدوت نے بھی بیان کیا ہے۔ سی این این کو دیے ساکشاتکار میں ریما بنتے بندر نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ کچھ لوگ امریکہ اور سعودی عرب کے سمبندھوں میں پنروچار کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سکاراتمک بات ہے کیونکہ ورتمان سمے کا سعودی عرب 10 سال پہلے والا سعودی عرب نہیں رہا ہے۔ یہاں پر دھیان یوگ بندو یہ ہے کہ واشنگٹن تتھا ریاض کے بیچ متبھید ایسے میں بڑھ رہا ہے کہ جب امریکہ میں کانگریس کے چناؤ ہونے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں کچھ ٹیکہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان چناؤں میں ڈیموکریٹس کو پراجت کرنے کے لیے اب روس اور سعودی عرب ایک جٹ ہو گئے ہیں۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ دلی ایم سی ڈی چناؤں سے پہلے بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ جاری گھمسان کا بیورہ دے رہے ہیں دلی سے شمشاد کاظمی۔
دلی میں نگر نگم چناؤں کی سگ بگاہٹ کے بیچ آج بھاجپا اور دلی کی ستاداری عام آدمی پارٹی کے بیچ کوڑے پر راجنیتی شروع ہو گئی۔ دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال دلی نگر نگم کے دائرے میں آنے والی غازی پور لینڈ فیلڈ سائٹ کا دورہ کرنے پہنچے جو کوڑے کے پہاڑ کی طرح دکھتا ہے۔ کیجریوال نے دلی نگر نگم میں پچھلے کئی ورشوں سے راج کر رہی بھاجپا پر جم کر نشانہ سادھا اور کہا کہ پچھلے 15 ورشوں میں بھاجپا نے دلی کو کوڑے کے 3 پہاڑ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھاجپا بتائے کہ دلی نگر نگم نے پچھلے 15 ورشوں میں کیا کیا۔
بی جے پی کو میں چیلنج کرتا ہوں، ان کے سب سے بڑے نیتاؤں کو چیلنج کرتا ہوں، 15 سال میں ایک کام بتا دے انہوں نے، ایک کام جو ایم سی ڈی والوں نے 15 سال میں کیا ہو۔
کیجریوال نے کہا کہ پچھلے 15 ورشوں سے دلی نگر نگم میں بیٹھی بھاجپا نے پوری دلی میں ہر جگہ کوڑا پھیلا رکھا ہے۔ آپ کارکرتاؤں کا آروپ ہے کہ ایک دشک سے ادھک سمے تک ایم سی ڈی پر قابض رہنے کے باوجود لینڈ فل کی سمسیا سماپت نہیں ہو پائی ہے۔ دلی کے مکھیہ منتری کی غازی پور یاترا آرمبھ ہونے سے پہلے ہی بھاجپا کارکرتا کالے جھنڈے لے کر وہاں ایکترت ہو گئے اور مکھیہ منتری کے ورودھ نعرے لگائے اور دھرنے پر بیٹھ گئے۔ عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے بھی پردرشن کیا، جس کے دوران دلی بھاجپا کارکرتا اور عام آدمی پارٹی کے کارکرتا آمنے سامنے آ گئے۔ عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے بھاجپا ہائے ہائے کے نعرے لگائے۔ دلی کی ستاداری عام آدمی پارٹی پچھلے 8 ورشوں سے ستہ پر قابض ہے، لیکن دلی نگر نگم میں سیاسی ورچسو قائم نہیں کر پائی ہے۔ دلی نگر نگم کے بجٹ کو لے کر کیندر کی بھاجپا سرکار اور دلی کی عام آدمی پارٹی کی سرکار برابر ٹکراؤ کی مدرا میں رہی ہے، اور یہ ٹکراؤ اس سمے اور بڑھ گیا ہے جب دلی نگر نگم کے اترکت گجرات ودھان سبھا کے چناؤ بھی ہونے والے ہیں، جہاں عام آدمی پارٹی گجرات کی ستاداری بھارتی جنتا پارٹی کو چنوتی دے رہی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتا، آپ سن رہے تھے کارکرم راجنیتک چرچا، اور اب پرستت ہے ساپتاہک کارکرم آج کی بات۔
آج کی بات۔ दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टू के संबंध में भारत सरकार के रवैये के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, कश्मीरी फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टू को 18 अक्टूबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर वैध वीजा और टिकट होने के बावजूद न्यूयॉर्क जाने से रोक दिया गया था। वे पुलित्जर पुरस्कार समारोह में शामिल होने जा रही थी। मट्टू समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक टीम का हिस्सा थी जिसे भारत में कोविड-19 महामारी की कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दूसरी बार था जब मट्टू को भारत से बाहर जाने से रोका गया था। इससे पहले मट्टू को इसी साल जुलाई महीने में फ्रांस जाने से रोक दिया गया था। तब उन्होंने बताया था कि वे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस जा रही थी जब दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उन्हें इमिग्रेशन पर रोक लिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार सना इरशाद मट्टू से डर गई या फिर सरकार को ये डर था कि कहीं सना इरशाद मट्टू अमेरिका जाकर कश्मीर में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा न उठा दें, क्योंकि किसी भी देश के पत्रकार को और वो भी महिला पत्रकार को अगर पत्रकारिता की दुनिया के सबसे बड़े अवार्डों में से एक से सम्मानित किया जा रहा हो तो वो तो उस देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, न कि उसको अवार्ड लेने जाने से रोका जाना चाहिए। क्या सना को केवल कश्मीरी होने की वजह से रोका गया? इस सवाल के जवाब में भारत के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरुण त्रिपाठी का कहना है।
तो जो उनके साथ दो अन्य पत्रकारों को पुरस्कार मिला था, अदनान आबिदी और अमित दवे और एक अदनान सिद्दीक भी जो है तो राइटर के ही लोग हैं, उन लोगों को तो नहीं रोका गया, लेकिन सना इरशाद मट्टू को रोका गया। अब ये बाकी लोग जिनको जाने दिया गया है वो कश्मीर के नहीं, तो कश्मीर जो है वो एक तरह से कश्मीर फाइल्स की बजाय कुछ अजीब सी सीक्रेट फाइल हो गई है। क्या हो गया है कि आप जो है वो सच्चाई को दबाना या एक हाईली सेंसिटिव स्पॉट उसको आपने मान लिया है, ये बहुत विचित्र सी स्थिति है निश्चित तौर पे। और जो आपने जो है वो उनको रोक करके जो काम किया उससे जो है दुनिया भर में आपकी आलोचना भी हो रही है, तो बात मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इस बात को तभी समझा जा सकता है जब एक खास मानस जो है वो सत्ता को सत्ता राजनीति साहित्य इतिहास जो है वो कला सब पर एक एकाधिकारवादी जो मानस है और राष्ट्रवाद के माध्यम से उस एकाधिकार का जो पूरा मामला चल रहा है, तो वो उस मानसिकता के तहत ही इसको समझा जा सकता है। और तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप किसी तथ्य को जितना ही छुपाएंगे वो उतना ही कहीं ना कहीं जो है वो मेमोराइज किया जाएगा, उतना ही रखा जाएगा, उतना ही आर्काइव में चला जाएगा और गूगल की दुनिया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट ही हो जाएगा। अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आ गई कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों का जो आधार है वो प्रेस फ्रीडम आधार और डेमोक्रेसी आधार है, तो इसको हम जो है छोड़ नहीं सकते और हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक बड़ा देश जो आपका मित्र है और आप उसके नजदीक जा रहे हो, घनिष्ठ जा रहे हो, लेकिन वो आपसे कई मामलों में असहज महसूस करता है। अब या तो ये हो सकता है कि जो आपका जो है बड़ा मित्र है, समर्थ मित्र है, वो ये खाली दिखावे के लिए कर देता है, लेकिन वहां की जो संस्थाएं हैं वो पुरस्कृत भी करती हैं अच्छा काम करने वालों को। तो निश्चित तौर पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 180 देशों में हमारा जो नंबर 142वां था वो खिसक करके 150 नंबर पे आ गया। तो हम एक अच्छे लोकतंत्र के रूप में हम निरंतर फिसल रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण।
साथ ही ये भी सवाल उठता है कि सना इरशाद मट्टू ने कोई ऐसा काम तो किया नहीं है कि जो अपराध हो या आपत्तिजनक हो, तो फिर क्यों उन्हें अमेरिका जाने से रोका गया? कहीं सरकार को इस बात का डर तो नहीं है कि उसके दावे की कोई पोल ना खोल दे? इस सवाल के जवाब में भारत की वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा एस त्रिपाठी का कहना है,
कश्मीर के हालात के लिए एक सरकार की नैरेटिव है और सरकार उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। वो किसी ऐसे इंडिपेंडेंट नैरेटिव को कभी दुनिया के सामने आने देगी जिससे कि उसकी अपनी पोजीशन अनकंफर्टेबल हो जाए। मैं हाल में कश्मीर होके आई हूँ, 2 महीना पहले मैं कश्मीर से आई हूँ, तो नॉट एज अ जर्नलिस्ट, मैं कुछ कवर करने नहीं गई थी, मैं घूमने गई थी, लेकिन जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है वो जो एक सरकार की बनाई हुई जो पिक्चर है जिसमें कि ये बताया जाता है कि कश्मीर में एकदम अब जन्नत हो गई है, कश्मीर जो कि हम पहले बचपन में पढ़ा करते थे और वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और लोग मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं, वो वास्तविकता नहीं है और वो वास्तविकता दुनिया के सामने न आए ये सरकार की कोशिश रहती है। इसलिए सना मट्टू को रोका गया है। सना मट्टू ने बहुत काम किया था, मैंने उनके बारे में पढ़ा काफी, तो उन्होंने कोविड के टाइम में बहुत अच्छी ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्टिंग की थी कश्मीर में, रॉयटर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको कुछ 2 लाइन पढ़ के सुना दूं कि रॉयटर ने जो उनका इंट्रोडक्शन दिया है पुलित्जर अनाउंस करते हुए, उसमें उनके बारे में क्या लिखा है। द पुलित्जर इंट्रोडक्शन रीड्स, रेंजिंग फ्रॉम ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज टू इन डेप्थ स्टोरी टेलिंग, हर वर्क कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डिपिक्टिंग द टेंशन बिटवीन द सीमिंग ऑर्डिनरीनेस ऑफ लाइफ एंड द स्टार्क सिंबल्स ऑफ अ मिनासिंग मिलिटराइज्ड मिल्यू ऑफ कश्मीर। तो ये जो मिलिटराइज्ड मिल्यू ऑफ कश्मीर एंड सीमिंग ऑर्डिनरीनेस ऑफ लाइफ की बात रॉयटर ने लिखी है, सरकार तो ये हमें नहीं बताती है। सरकार के हिसाब से तो कश्मीर में वो मिलिटराइज्ड मिल्यू रही नहीं गया है और जो वहां के ऑर्डिनरी कश्मीर है वो तो अब जन्नत में रह रहे हैं। तो ये चीज अच्छा इंडिपेंडेंट, दूसरा ऐसा जर्नलिस्ट जिसको कि सरकार को पता है कि वो इंडिपेंडेंट है वाकई में और उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो वहां जाके अवार्ड लेते समय अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताएंगी, इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो नो वंडर हमें तो आश्चर्य नहीं हुआ बिल्कुल कि उनको जाने से रोका गया, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जो रियलिटी है वो जो लोकल कश्मीरी वहां रहते हैं उनके लिए बिल्कुल अलग है और जो हम लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए उनके लिए बिल्कुल अलग है।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात
इसी तरह अमेरिका में रहने वाली कश्मीर की वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन से ये पूछा गया कि सना को रोके जाने को आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि कश्मीर से आपका संबंध है तो वहां के हालात के बारे में आप अच्छी तरह जानती हैं, तो क्या सना मट्टू जो पत्रकारिता कर रही थी उसमें उन्होंने कोई गलत काम किया है, और अगर कोई गलत कार्य नहीं किया तो फिर सरकार ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को ग्रहण करने से क्यों रोका? अनुराधा भसीन कहती हैं,
कई तरीके अपनाए जा रहे हैं कि प्रेस की जबान किस तरह से बंद की जाए, और ये कहना जरूरी हो गया है, होना नहीं चाहिए था इस सरकार के दौरान के पत्रकारिता, पत्रकारों का जो काम है वो ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें और उनकी जो गलतियां हैं उसको नजरअंदाज कर दें। उनका काम है सच्चाई को पेश करना, और इस सच्चाई को पेश करना, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है अपने काम के लिए। पुलित्जर एक बहुत मानी हुई संस्था है, उनका अवार्ड एक बहुत महत्व रखता है और ये गर्व की बात होनी चाहिए थी पूरे देश के लिए, लेकिन उसको रोके जाना, और ये पहली बार नहीं है कि सना को रोका गया है। उसकी एक एग्जीबिशन होने वाली थी फ्रांस में चंद महीने पहले, उसको तब भी रोका गया। कई और पत्रकारों पर इस किस्म के रोक लगाए गए हैं। तो जर्नलिस्ट जो हैं इनको वैसे भी पत्रकारिता को एक क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही, तो تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ زبان پترکاروں کی بند کر رہے ہیں تو اس کے تحت آپ پورے عوام کی زبان بند کر رہے ہیں, کیونکہ پترکار جو ہیں وہ عوام کی آواز پبلک ڈومین تک لاتے ہیں, جو وائسز انہرڈ ہیں ان کی آواز لاتے ہیں, وہ سچائی کو درشاتے ہیں. تو کس سچائی کو دبایا جا رہا ہے, کس سچائی کو کچلا جا رہا ہے, یہ جاننے کی ضرورت ہے آج کی. کہ کوئی بھی لیگیلٹی نہیں ہے جس طرح سے روکا جاتا ہے, اور اس کو اگر اتنا یہ لیگل ہے پروسیس کہ آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں, آپ پبلک میں لائیے لسٹ کو. آپ کیوں لوگوں پترکاروں کو سسپینس میں رکھتے ہیں, وہ ایئرپورٹ جاتے ہیں, امیگریشن ڈیسک پہ پہنچنے پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں جا پا رہے ہیں, اور اس طرح سے بادھائیں ڈالی جا رہی ہیں پترکارتا پہ. یہ ایک بہت ڈی مورلائزنگ امپیکٹ اس کا, تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ چھپانا چاہتے ہیں, اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے شاید 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ وہی کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ یہ سرکار میں ہیں, یہ ریسپانسبل لوگ ہیں, ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک کنٹری رہی ہے انڈیا, دے شوڈ اسٹیپ بیک اینڈ تھنک کہ کیا یہ دیش کے ہت میں ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ دیش کے ہت میں نہیں ہے.
ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ورش 2014 کے بعد سے بھارت میں پترکار اور پترکارتا کی کیا استھتی ہے, لیکن جو تھوڑے بہت سچے اور ایماندار پترکار بچے ہیں اور سماج جن سے سچی اور اچھی پترکارتا کی امیدیں لگائے ہوئے ہے, اب ان کا بھی گلا گھونٹا جانے لگا ہے. ایک اور دنیا ایسے پترکاروں کو سمانت کر رہی ہے تو دوسری اور بھارت سرکار انہیں ہر طرح سے پرتاڑت کر رہی ہے. کل ملا کر بھارت کی نریندر مودی سرکار دوارا جس طرح پترکارتا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ایک لوک تانترک دیش کے بھوش پر منڈراتا خطرہ ہے. کیول اگر کشمیر کی بات کریں تو اگست 2019 سے کشمیر میں کم سے کم 35 پترکاروں نے اپنی رپورٹنگ کے چلتے پولیسیا پوچھ تاچھ, چھاپے ماری, دھمکیاں, شاریرک حملے, سوتنتر وچرن پر پرتیبندھ یا جھوٹے اپرادھک معاملوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے. اگر یہی استھتی رہی اور کیول سرکاری پترکار ہی سماج میں دکھائی دینے لگیں گے تو وہ دن دور نہیں جب لوگوں کا پترکار اور پترکارتا پر سے وشواس ہی اٹھ جائے گا. اس لیے سرکار کو چاہیے کہ ایسے کام کرے کہ جسے چھپانے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ وہ سوئم پترکاروں کو بلائے اور اپنے کاموں کو دکھائے اور پترکاروں کے سوالوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے. ایک مضبوط اور ایماندار سرکار کی یہی تو پہچان ہوتی ہے, کیونکہ ایک مہیلا پترکار سے ڈرنے والی سرکار کبھی مضبوط نہیں مانی جائے گی. تو دوستوں, کاریکرم کا سمے یہیں سماپت ہوتا ہے, ہمیں انومتی دیں.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. شوتا, آپ سن رہے تھے کاریکرم آج کی بات, اور اب پرست ہے ہمارا اگلا ساپتاہک کاریکرم سفل مہیلائیں. دوستوں, کارکرم سفل مہیلائیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ میں احمد عباس آپ کی سیوا میں اپستھت ہوں. میرا سلام سویکار کیجیے. فٹ بال کی ہی طرح ایک کھیل ہے جسے فٹسال کہتے ہیں, جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں لوک پریہ ہو گیا. اس سمے دنیا کے زیادہ تر دیشوں کی راشٹریہ اور انتراشٹریہ استر پر فٹسال کی پروش اور مہیلا دونوں ٹیمیں ہیں. ویسے کہا جاتا ہے کہ لیٹن امریکہ اس پرکار کے نئے کھیلوں کا کیندر ہے. اوروگوے ایسا پہلا دیش تھا جہاں فٹسال ویکتیگت پہل کے ساتھ شروع ہوا تھا, جو ایک ایسے کھیل میں نواچار کرنے کی مانگ کرتا تھا جو پہلے سے ہی لیٹن امریکہ میں انتر نہیں تھا, اور یورپ اور اتری امریکہ
दोनों में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। हालांकि इस खेल के पैरामीटर इसके आरंभ से तय नहीं हुए थे, लेकिन ये खेल फुटबॉल के नियमों पर आधारित था और इसे छोटे और उपयुक्त स्थानों पर खेला जाने लगा। आज दुनिया भर में इस खेल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसका व्यापक स्तर पर स्वागत भी हो रहा है। हालिया दिनों में खबर आई कि एक ईरानी महिला को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटसाल गोलकीपर के लिए नामांकित किया गया था। फुटसाल प्लेनेट वेबसाइट पर साल के अंत में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटसाल खिलाड़ियों को परिचय कराया जाता है और उनका चयन किया जाता है। वर्ष 2020 में चुने गए फुटसाल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में इस विश्वसनीय वेबसाइट ने ईरान की मिस रफसंजान नामक एक महिला फुटसाल टीम की गोलकीपर जैनब कर्मी को दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ फुटसाल गोलकीपरों में शामिल किया। जैनब कर्मी ने पिछले सीजन में मिस रफसंजान टीम के साथ ईरान वीमेंस लीग की चैंपियनशिप जीती थी। दुनिया की जिन 10 सर्वश्रेष्ठ फुटसाल गोलकीपरों में जैनब कर्मी के नाम को शामिल किया गया है, उनमें ब्राजील, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, रूस और जापान की गोलकीपर भी शामिल हैं। हालांकि पिछले 2 वर्षों में इस खेल में ईरान का प्रतिनिधित्व कर रही फरजाना तवसुली भी हैं, जो ईरानी महिला राष्ट्रीय फुटसाल टीम की अनुभवी गोलकीपर हैं, जो लगातार 2 वर्षों तक महिला फुटसाल में दुनिया की 6वीं और 7वीं रैंक पर बनी रहीं। लेकिन हालिया दिनों में राष्ट्रीय और क्लब स्तर की होने वाली फुटसाल प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंट में अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से फुटसाल प्लेनेट वेबसाइट ने 2020 के लिए जैनब कर्मी का चयन किया। जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि फुटसाल एक ऐसा खेल है जिसे इंडोर खेला जाने वाला फुटबॉल भी कहा जा सकता है। फुटसाल में भी फुटबॉल की तरह एक बॉल से खेला जाता है, लेकिन उस बॉल का आकार थोड़ा छोटा होता है। फुटबॉल के मैदान के मुकाबले में एक छोटे से स्थान पर खेला जा सकता है और कम जगह के कारण अधिक गतिशीलता होती है। ज्यादा स्पीड के साथ खेला जाने वाला फुटसाल एक प्रकार का तेज फुटबॉल है, जिसमें विशिष्ट पूर्वापेक्षाएं हैं, जैसे बुनियादी तकनीक, रणनीति, घुमाव, जो फुटसाल खेल प्रणाली का एक असली सिद्धांत है, और विभिन्न प्रकार की फुटसाल रक्षा प्रणालियां हैं, जो या तो प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण प्रणाली पर आधारित हैं या एक एकल रक्षा प्रणाली जिसे अंतरिक्ष रक्षा पर आधारित सभी प्रकार की आक्रमण प्रणालियों से निपटने के लिए अपनाया जाता है। ईरान की राष्ट्रीय महिला फुटसाल टीम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेती है और इसका संचालन ईरान फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। मई 2018 में राष्ट्रीय फुटसाल टीम जापान के खिलाफ 5 गोल करके एशिया की नंबर 1 टीम बनने में कामयाब हो गई थी। थाईलैंड की मेजबानी में आयोजित टूर्नामेंट में जापान से पहले ईरान ने तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन के खिलाफ जीत हासिल की थी और सेमीफाइनल में ईरानी टीम ने वियतनाम को पराजित किया था। ईरानी स्टार महिला फुटसाल खिलाड़ी फरिश्ते करीमी ने लगातार दूसरी बार एशिया की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का खिताब जीता था। सारा शीरबेगी और फातिमा एतेमादी वर्ष 2018 में सबसे अधिक गोल मारने वाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर थीं। इस पूरे टूर्नामेंट में 2 बार गोल की हैट्रिक मारने वाली शीरबेगी को टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल मारने वाली महिला का अवार्ड भी मिला था, जबकि फरजाना तवसुली को सबसे बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड मिला था। इस प्रतियोगिता की नैतिक टीम के रूप में भी ईरान को चुना गया था और ईरान की कप्तान नसीमा गुलामी को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था। जैनब करमी एक गर्मजोश और मेहनती महिला हैं, जिन्होंने 9 साल की उम्र में वॉलीबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन साथ ही फुटबॉल खिलाड़ियों के कार्टून देखकर इस खेल में उनकी रुचि बढ़ गई थी। इस्फहान की रहने वाली 20 वर्षीय गोलकीपर महिला फुटसाल प्रीमियर लीग में अपनी उपस्थिति के 3रे वर्ष में ही मिस रफसंजान टीम के साथ प्रीमियर लीग की चैंपियनशिप जीतने में सक्षम रही और सबसे कम गोल के साथ टूर्नामेंट में एक आश्चर्य का केंद्र बन गई। वो इसके बारे में बहुत बात करते हुए कहती हैं कि पहली बार मुझे अंडर 13 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के साथ श्रीलंका आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद अंडर 16 टीम का हिस्सा बनी और छोटे कद के कारण मैं हमेशा चौथी गोलकीपर के तौर पर टीम में रही। वर्ष 2013 में मेरी प्रतिभा को देखते हुए कोच ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे राष्ट्रीय युवा फुटसाल टीम में तीसरे डिवीजन की प्रतियोगिता में आमंत्रित किया, जो राष्ट्रीय युवा टीम के शुभारंभ के साथ हुई थी, और उसके बाद से ही मैं फुटसाल टीम का हमेशा के लिए हिस्सा बन गई। पिछले साल एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में मुख्य कोच नीलोफर अर्दलान के नेतृत्व में हमने टूर्नामेंट जीता। वो फुटसाल के हर मैच में सामने वाली टीम के लिए गोल को बंद रखना अपना एकमात्र लक्ष्य मानती हैं, ताकि वो खुद को साबित कर सकें और तकनीकी स्टाफ ने जो उन पर भरोसा जताया है उसका जवाब दे सकें। इस संबंध में वो कहती हैं कि फाइनल गेम्स में मेरी छोटी सी गलती से टीम को हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करती हूं कि टीम में मौजूद बेहतरीन डिफेंडरों की मदद से हमें सबसे कम गोल खाने पड़े। मैं अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार करना चाहती हूं और मैं अपनी महत्वाकांक्षा के बावजूद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बनना चाहती हूं। जैनब करमी खेल में नैतिकता को प्रगति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मानती हैं और कहती हैं कि एक एथलीट जितना अधिक अच्छे स्वभाव का होगा वो उतना ही अधिक प्रगति करेगा। मिस रफसंजान की टीम की कोच हमेशा एक बात कहा करती थी कि जिस पर हम सबको अमल करना चाहिए और वो है विश्वास, सहारा और प्रयास। मैं इस बात पर पहुंची कि हर एथलीट को कोशिश करते रहना चाहिए। ईश्वर उसे देख रहा होता है और उसे सबसे अच्छा रास्ता दिखाता है और उसके साथ सबसे अच्छी चीज होती है। जैनब करमी कहती हैं कि मैं फुटसाल के माध्यम से ईश्वर तक पहुंची हूं। सर्वश्रेष्ठ फुटसाल गोलकीपर के लिए चुनी गई खिलाड़ी का कहना है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि खेल शरीर और आत्मा को मजबूत करने और सभी के विकास और उत्कृष्टता के लिए एक रचनात्मक शैक्षिक प्रक्रिया है। हमारी धार्मिक शिक्षाओं में शारीरिक व्यायाम के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। हमारा धर्म युवाओं को जीवन शक्ति, शरीर और आत्मा को मजबूत करने पर बहुत ध्यान देता है और लोगों से स्वस्थ और सुखी जीवन का रास्ता खोजने के लिए कहता है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में व्यायाम सबसे अच्छे साधनों में से एक है। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसमें महिलाएं भाग न लेती हों, लेकिन इस भागीदारी का स्तर प्रत्येक खेल और प्रत्येक देश में अलग अलग होता है। कुछ देशों की संस्कृति या कानून, विशेष रूप से इस्लामी देशों में, कुछ खेलों में महिलाओं की उपस्थिति के लिए कुछ सीमितताएं हैं। मुक्केबाजी, कुश्ती और भारोत्तोलन जैसे कुछ खेलों में उनकी भागीदारी और रुचि पुरुष एथलीटों की तुलना में बहुत कम है। दूसरी ओर टेनिस, जिम्नास्टिक, फिगर स्केटिंग और बीच वॉलीबॉल जैसे कुछ खेलों में महिला एथलीट अपने पुरुष समकक्षों के बराबर या अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। वहीं नेटबॉल और सॉफ्टबॉल जैसे कई अन्य खेल महिलाओं के खेल के रूप में जाने जाने लगे हैं। ईरान में पुरुषों और महिलाओं को मानव समाज और जीवन गतिविधियों से संबंधित सभी गतिविधियों में समान अधिकार है। हालांकि इस्लाम में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं के लिए अनुरूप नहीं जाना जाता, क्योंकि वो शरीर से मेल नहीं खाते, यानी महिलाओं के शरीर में जो नजाकत होती है उससे मेल नहीं खाते। इसी तरह कुछ काम ऐसे होते हैं जो पुरुषों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वो अपनी नैतिक और शारीरिक स्थिति के अनुकूल उन कामों को नहीं पाते। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता इस संबंध में कहते हैं कि इस मुद्दे का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि महिला सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में सक्रिय हो सकती है या नहीं। कार्य का विभाजन उस कार्य की संभावनाओं, उत्साह और आवश्यकता के क्षेत्रों के अनुसार होता है। आज हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हर वो खेल जो आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक नुकसान का कारण नहीं बनता है, निसंदेह इस्लाम द्वारा अनुमोदित है और स्वीकृति से अधिक इसे इस्लाम द्वारा प्रोत्साहित और स्वीकार किया जाता है और इसे एक मूल्यवान कार्य माना जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروع ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے تھے۔ کاریکرموں کے بارے میں آپ کے سجھاؤں اور آپ کی پرتکریاؤں کی ہمیں پرتیکشا رہے گی۔ کاریکرموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس سے ہمیں ضرور اوگت کروائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@wsirib.ir۔ اور شتو ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ واٹس ایپ پر سمپرک کے لیے ہمارا نمبر ہے 0098-90-350-65492۔ تو شتو ہماری یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ ایک بار ہم پھر آپ سے انوروھ کریں گے کہ کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچار اور اپنے سجھاؤ ہمیں ضرور بھیجیے، اس سے کاریکرموں کو بہتر بنانے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ احمد عباس اور انیہ سبھی ساتھیوں کو انمتی دیجیے۔ خدا حافظ۔
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.